गोवा में जब आरव ने आयु को देखा था, वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन रुद्र और अनुष्का ने उसे यही समझाया था कि आयु उसके सामने आने के बावजूद वापस चली गई, इसका मतलब वो उससे बात नहीं करना चाहती है। उनके कहने पर आरव वापस चंडीगढ़ लौट तो गया था, लेकिन उसका दिल नहीं माना। वो वापस गोवा पहुंच गया था और सेलिब्रेशंस के ऑफिस के थोड़ा आगे बैठकर आयु के आने का इंतजार करने लगा। लगभग 8 बजे के करीब आयु अयान के साथ ऑफिस की तरफ आ रही थी, लेकिन जैसे ही आरव ने अयान को देखा, वो जल्दी से बिना आयु से बात किए हुए निकल गया था। इस वक्त उसके चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। अब आरव को आयु से बात करने से ज्यादा जल्दी चंडीगढ़ पहुंचने की थी। फ्लाइट टाइम पर नहीं होने की वजह से उसने प्राइवेट जेट बुक किया और चंडीगढ़ जाने के लिए निकल गया था। वहीं आयु और अयान को तो एहसास तक नहीं था कि आरव वहां उनका इंतजार कर रहा था और उसने उन दोनों को साथ देख लिया था। हमेशा की तरह वे दोनों आते ही सीधे क्रिस्टी के ऑफिस में गए। क्रिस्टी ने आयु की तरफ देखा, उसके चेहरे पर हल्के परेशानी के भाव थे। उसने अयान और आयु को बैठने का इशारा किया और गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। अयान, तुम ऑफिशियली ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो? मैं बार बार अपने सीनियर्स को इस बात की सफाई नहीं दे सकती कि एक अननोन इंसान हमारी मदद क्यों कर रहा है, और मैं उसे अपने सारे प्रोजेक्ट के बारे में क्यों बताती हूँ। तुम मुझे पार्ट टाइम वर्कर भी बता सकती हो, देखा जाए तो उन्हें खुशी होनी चाहिए कि कोई फ्री में उनके लिए काम कर रहा है, अयान ने बेपरवाही से जवाब दिया। उसे आयु का ख्याल रखने के लिए, उसके इर्द गिर्द रहने के लिए जो बहाना समझ आता, बस वही बोलकर अयान आयु के साथ लगभग पूरा दिन बिताता था। फिलहाल मैंने यही कहा है, क्रिस्टी बोली। आज उसकी आवाज में एक अलग ही मायूसी झलक रही थी। आयु ने उसके चेहरे और हाव भाव को नोटिस किया। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम परेशान लग रही हो, क्या फिर से किसी क्लाइंट ने तंग किया या फिर सीनियर्स की तरफ से तुम्हें डांट सुनने को मिली? नहीं, सब ठीक है, बस मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, क्रिस्टी ने बुझी हुई आवाज में कहा। फिर उसने आयु के चेहरे की तरफ देखा, उसे आरव याद आ गया था। अचानक क्रिस्टी के चेहरे के भाव सख्त हो गए और वो चिढ़कर बोली, देखो मैं ये प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहती थी और मैंने उन्हें साफ मना कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आदमी तुम्हें लेकर इतना ऑब्सेस्ड है। मैनेजमेंट मैं ही देखती हूँ, इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट लेना या ना लेना मुझ पर डिपेंड करता है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मेरे मना करने के बाद मिस्टर हरचंदानी ने ये प्रोजेक्ट ले लिया। हाँ तो ठीक है, हम देख लेंगे, इसमें इतना परेशान होने जैसा क्या है? अगर तुम नहीं करना चाहती तो इवेंट में मत आना, मैं और अयान वहाँ होंगे और हमारी टीम काफ़ी प्रोफेशनल है, तुम उस पर अच्छे से ट्रस्ट कर सकती हो, आयु ने उसे समझाया। अभी तुम्हें पूरी बात पता नहीं है, जब पता चलेगा तब मुझसे पहले तुम आने से इनकार करोगी। ये प्रोजेक्ट चंडीगढ़ की कंपनी डिज़ायर्स की तरफ से आया है, इवेंट का नाम ख्वाहिश है, और क्रिस्टी घुमा फिराकर आयु को बता रही थी। न जाने क्यों आरव का नाम सीधे आयु के सामने लेते हुए उसे अजीब लग रहा था। उसने खिंचकर गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे बताऊं, ये प्रोजेक्ट ख्वाहिश? वो बस यही चाहती थी कि आयु हर्ट ना हो, क्रिस्टी बोलते हुए रुक गई थी। तभी अयान ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, इसमें इतना घबराने की क्या बात है, सीधे सीधे बोलो ना कि ये ख्वाहिश रखने वाला इंसान कोई और नहीं तुम्हारा हस्बैंड आरव खुराना है। अयान ने बिल्कुल सीधे तरीके से सब कुछ कह दिया था, जिस पर क्रिस्टी और आयु दोनों उसकी तरफ घूर कर देखने लगीं। गुस्सा तो आयु को भी आ रहा था। तुम्हारी फैमिली कल यहाँ आई थी, क्रिस्टी ने आगे बताते हुए कहा, मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि तुम सेलिब्रेशंस के लिए काम करती हो, लेकिन मैंने तुम्हारी जुड़वा बहन को तुम्हारे नाम से बुलाया और इसी के साथ वे सब समझ गए थे। मुझे लगा था कि वे तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे और मैंने प्रोजेक्ट करने से भी मना कर दिया था। वो तुम्हारा एड्रेस मांग रहा था, वो आदमी सच में पागल है, उसने डायरेक्ट मिस्टर हरचंदानी को कॉन्टैक्ट किया और ये प्रोजेक्ट जबरदस्ती हमारे सिर डाल दिया। उसकी खास डिमांड ये है कि इस प्रोजेक्ट को तुम हैंडल करो, वो रेगुलर फीस से 5 गुना ज्यादा पे कर रहा है, और शायद आगे मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा हस्बैंड किस हद तक पागल है। आयु बिल्कुल शांत हो गई थी। अयान ने आयु की तरफ देखा, वो नहीं चाहता था कि कल जिस तरह आयु आरव को देखकर इमोशनल हुई थी और सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहती थी, ऐसी सिचुएशन वापस आए। अयान खुद चाहता था कि आयु और आरव बात करें, लेकिन कल के इंसिडेंट के बाद उसे समझ आ गया था कि अभी वो वक्त नहीं आया था जब उन्हें बात करनी चाहिए। अयान ने आयु के हाथ पर हाथ रखा और गहरी आवाज में कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम रिजाइन कर सकती हो, तुम टैलेंटेड हो, तुम्हें दूसरी जॉब मिल जाएगी। अगर तुमने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हाँ कही तो तुम्हें बार बार उसके सामने जाना होगा, सिर्फ उसके सामने ही नहीं डिजायर्स जाना पड़ेगा, अपनी फैमिली का सामना करना होगा, इम्पल्सिव होकर डिसीजन मत लेना, अयान आयु को समझा रहा था। क्रिस्टी भी उसकी बात पर सहमति जताते हुए बोली, अयान बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके, जरूरी नहीं कि तुम सब कर पाओ, कई बार खुद की मेंटल पीस के लिए हमें कुछ टफ डिसीजन लेने होते हैं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी और ना ही तुम खुद के साथ जबरदस्ती करो। सिर्फ अयान ही नहीं, क्रिस्टी भी यही चाहती थी कि आयु मना कर दे, जबकि आयु बिल्कुल चुपचाप थी। वे दोनों आयु के चेहरे की तरफ गंभीर भाव से देख रहे थे। कुछ पल सोचने के बाद आयु ने क्रिस्टी की तरफ देखा और खुद को मजबूत करके कहा, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करूंगी और मैं चाहती हूँ कि मैं ही इसे लीड करूँ। मैं डिजायर्स में भी जाऊंगी, उससे बात भी करूंगी और उसका सामना भी। लेकिन उसकी जरूरत, क्रिस्टी ने उसे समझाना चाहा, पर आयु ने उसे बीच में काटते हुए कहा, अयान बिल्कुल ठीक कह रहा था कल। मैं दुनिया में कहीं भी भागकर चली जाऊं, कभी ना कभी उससे सामना हो ही जाएगा। उसके लिए मैं खुद को एक कमरे में बंद करके नहीं रख सकती हूं। पहले ही उसके चक्कर में मैंने अपने डिजाइनर बनने के सपने की कुर्बानी दे दी है, लेकिन अब और नहीं, मुझे बस इस बात से पीछे नहीं हटना है। उसकी बातें सुनकर अयान के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो हंसते हुए बोला, वेरी गुड मिसेस खुराना, ये हुई ना बात। जैसे ही अयान के मुंह से आयु के लिए मिसेस खुराना निकला, इस बार सिर्फ आयु ही नहीं, क्रिस्टी भी उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। तुम्हें उस आदमी को डिवोर्स दे देना चाहिए और साथ ही इस लड़के के साथ अपनी दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। ये बार बार तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़कता रहता है, क्रिस्टी ने अयान को अजीब नजरों से देखते हुए कहा। कुछ जख्म मरहम का भी काम करते हैं, मेरी बातें सुनकर ही ये इतनी स्ट्रांग हुई है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे ऑफिशियली ये कंपनी ही क्यों ना करनी पड़े, अयान ने जल्दी से जवाब दिया। जब आयु ये प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हो गई थी तो वो क्रिस्टी से आगे की डिटेल समझने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ आरव दोपहर के करीब वापस चंडीगढ़ पहुंच चुका था और वो सीधे गौरवी जी के घर पर गया। जब से आयु गई थी तब से आरव गौरवी जी के पास नहीं गया था, यहाँ तक कि वो उनसे ठीक से बात तक नहीं कर रहा था। अचानक उसे अपने घर पर देखकर गौरवी जी थोड़ा हैरान रह गईं और साथ ही आरव गुस्से में भी लग रहा था। बताओगे क्या हुआ है या मुझे यूं ही घूर कर देखते रहोगे, गौरवी जी ने आंखें घुमाकर कहा। और मैं क्यों गुस्सा ना करूं, आप लोगों ने मुझे गुस्सा करने की हर जायज वजह दी है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि अयान इंडिया आ चुका है, आरव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा।
ओह, तो तुम गोवा गए थे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में, गौरवी जी ने बेपरवाही से जवाब दिया। आरव ने गौरवी जी की तरफ घूर कर देखा। न सिर्फ उन्होंने अयान के इंडिया आने की बात छुपाई थी, बल्कि वो अच्छे से जानती थी कि अयान इस वक्त गोवा में है और वो भी आयु के साथ। बताया तो आपने भी नहीं कि पिछले कुछ महीनों से अयान आयु के साथ रह रहा है। आप लोग मेरे साथ ऐसी गेम्स कैसे खेल सकते हैं, जबकि आपको अच्छे से पता था कि मैं उसके लिए कितना तड़प रहा हूँ। अब तक मुझे लगता था कि ओबेरॉय फैमिली मुझे इस हाल में देखकर खुश होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी खुद की फैमिली भी ऐसी होगी, आरव ने गौरवी जी के पास बैठते हुए कहा। पहले वो गुस्से में नजर आ रहा था तो अब उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। आरव ने गौरवी जी की तरफ देखा और दर्द भरी आवाज़ में कहा, क्या आपको मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आई? तुम यहाँ बच्चों की तरह शिकायतें लगा रहे हो, जबकि तुम्हें खुश होना चाहिए कि हम पिछले 6 महीने से तुम्हारी आयु का ख्याल रख रहे हैं। तुमने और जय जी ने मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ी थी उस बच्ची का दिल दुखाने में, अभी भी आकर मुझसे शिकायतें कर रहे हो। क्या तुम्हारे मुँह पर जरा सी भी शर्म है आरव? इस बार गौरवी जी ने सख्त शब्दों में कहा। आरव कुछ बोलता उससे पहले गौरवी जी ने आगे उसे आंखें दिखाते हुए कहा, अब तक मैं चुप थी क्योंकि तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, अब जब तुमने जिक्र छेड़ ही दिया है तो चलो खुलकर बात करते हैं। आखिर तुम समझते क्या हो खुद को? क्या दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलती है या जो तुम समझोगे वही सही होगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयु पर शक करने की? गौरवी जी अपना गुस्सा पिछले 6 महीने से दबाकर बैठी थी और अब आरव खुद उनके सामने आया था तो वो शांत नहीं बैठने वाली थी। दादी, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं लोगों के सामने हमारे रिश्ते की तारीफ कर रहा था, उन्हें बता रहा था कि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आप सोचिए उस वक्त मेरे दिल पर क्या बीती होगी जब मैंने प्रोजेक्ट ऑन किया और वो उस मंथन के क्लोज थी। ठीक है, मेरी गलती थी जो मैंने उसे नहीं सुना, पर वो भी इक्वली गलत है, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? अगर मैंने गलती की थी तो मुझे मेरी गलती रियलाइज करवाती, आरव ने जवाब दिया। अच्छा, तो वो गलत थी, गौरवी जी ने उसे घूरते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है आरव, तुम हमें कुछ नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा? क्या साक्षी तुम्हारी राजदार हो सकती है? किस हक से तुमने उस पर शक किया था, जबकि तुम अच्छे से जानते थे कि पिछली रात तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था? उसने तुम्हें पूरे दिल से एक्सेप्ट किया था और अपने करीब आने की इजाज़त दी थी, जो उसने पिछले इतने सालों में मंथन को भी नहीं दी, और फिर तुमने उस पर शक किया। अब तक मैंने तुम्हें किसी चीज़ के लिए डांटा नहीं, लेकिन अब यही सोचती हूँ कि काश तुम्हारी पहली गलती पर ही तुम्हें कसकर थप्पड़ लगाया होता तो तुम आज एक बेहतर इंसान होते। आरव की नज़रें झुक गई थीं। उसने गौरवी जी से नज़र चुराते हुए दूसरी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बह गए थे। ऐसा नहीं था कि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था। आरव की मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं, वो बस गौरवी जी के सामने रोना नहीं चाहता था। गौरवी जी ने गहरी सांस ली और आरव का सिर अपने कंधे पर रख लिया था। उन्होंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा,
रोना चाहते तो रो सकते हो और तुम्हारी तड़प हम सबको दिखाई देती है। तभी तुम्हारा छोटा भाई हर तरह से तुम्हारी पत्नी का ख्याल रख रहा है। वो बस उसे तैयार कर रहा है ताकि जब तुम दोनों साथ में आओ तो वो कमजोर ना पड़े। अगर उसके दिल में कोई शिकायत है तो वो खुलकर तुम्हारे सामने रखे। तुम्हें उसे वक्त देना होगा आरव, वो ठीक नहीं है। और कितना टाइम दूं दादी, पिछले 6 महीने से उसके बिना रह रहा हूँ, क्या ये कम नहीं है? पता नहीं सबको मुझे ही सजा क्यों देनी होती है, आरव ने आंखें बंद करके कहा। गौरवी जी बिल्कुल चुप हो गई थी। आरव को अच्छा खासा डांटने के बाद उनकी आंखों में आंसू देखकर उन्हें बुरा लग रहा था। अच्छा ठीक है ना, बच्चों की तरह रोना बंद कर, मैंने बात कर ली है। सेलिब्रेशंस तुम्हारा इवेंट हैंडल करने के लिए तैयार है, और हाँ, आयु ही इसे लीड करने वाली है। वो तुमसे नाराज है और हर तरीके से तुमसे झगड़ा करेगी, तुम्हें तैयार रहना होगा। उस पर गुस्सा नहीं करना है, उसे प्यार से मनाना होगा, गौरवी जी ने गहरी सांस लेकर कहा। आरव ने जल्दी से उनके कंधे से सिर हटाया और उनकी तरफ हैरानी से देखने लगा था। हाँ, वो गौरवी जी ही थीं जिन्होंने सेलिब्रेशंस के मालिक मिस्टर हरचंदानी से बात करके उन्हें 5 गुना ज्यादा पैसे देकर ये प्रोजेक्ट करने पर मजबूर किया था। ऐसे मत समझना कि तुम्हारी दादी इस घर में रहती है तो उन्हें बिजनेस के बारे में कोई खबर नहीं है। तुम्हारे बाप के जाने के बाद तुम छोटे थे और इस बिजनेस को मैंने ही संभाला है। किससे किस तरह से और कैसे डील करनी है ये मैं भी अच्छे से जानती हूँ। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने फिर से उसका दिल दुखाया तो मैं तुम्हें घसीट कर कोर्ट लेकर जाऊंगी और तुम दोनों का तलाक करवा दूंगी, गौरवी जी ने सख्त आवाज में कहा, जिस पर आरव के होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। तरीका चाहे जो भी क्यों ना रहा हो, गौरवी जी ने आरव और आयु को फिर से मिलने का तरीका ढूंढ ही लिया था, और आरव भी अब आयु की नाराजगी सहने के लिए तैयार था।